नदियां में लहरे नचे लहरों पे नाचे मैया किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया कोई न जाने भैया किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया कोई न जाने भैया।
शक्ति सामंत की कई अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म थी अमानुष। उत्तम कुमार ने वैसे तो बहुत ही कम हिंदी फिल्मों में काम किया है मगर उनकी एक यादगार फिल्म थी अमानुष। संगीतकार थे श्यामल मित्रा और गीत लिखे थे इंदिवर साहब ने। फिल्म शुरू होती है एक बोट पे जहां नया पुलिस ऑफिसर भुवन धनियाखाली आ रहा है। धनियाखाली के ग्राम पंचायत का मुखिया माहिम घोषाल बताता है कि मधु चौधरी जो कि एक जमींदार का भतीजा है बहुत ही खतरनाक आदमी है। चोरी, नीच औरतों की संगत, स्मगलिंग और न जाने कितनी बुराइयां हैं उसमें। पर सच तो ये है कि माहिम घोषाल खुद ही एक अच्छा आदमी नहीं है।
माफ कीजिएगा सरकार, आपसे कुछ
कहिए।
मेरा नाम है महिम घोषाल।
महिम घोषाल? हाँ हाँ, काली बाबू।
कौन काली बाबू? हमारे इलाके के पुराने दरोगा जी।
उन्हीं से चलने से पहले यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था तभी बातों बातों में उन्होंने आपका नाम।
हुजूर, बड़ों के महफिल में इस मामूली आदमी का जिक्र मेरी खुशकिस्मती है सरकार। इस इलाके का भाग्य है कि आप जैसा ऑफिसर आया है।
अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात हो गई। आप तो शायद ग्राम पंचायत के प्रधान भी है ना?
अरे छोड़िए सरकार, क्या रखा है प्रधान बनने में। गाँव के 10 लोग प्यार करते हैं। मैंने बहुत मना किया, भैया मुझे छोड़ दो,
तंदुरुस्ती साथ नहीं देती मगर कौन सुनता है, प्रधान बनाकर ही छोड़ा।
गांव में पुजारी पूजा करने आ रहा है तभी धन्नो सामने आ जाती है। पुजारी हटने को कहता है तो वो कहती है सुबह इतनी नफरत और रात को हमारी गलियों में घूमते रहते हो तब कुछ नहीं होता। तभी मधु वहाँ आ जाता है। लड़कियां उसे कन्हैया कहती है। माहिम गाँव के डॉक्टर के लिए शहर से दवाइयां लेकर आता है और कहता है वो रेखा के लिए भी कुछ सामान लेकर आया है पर रेखा स्कूल गई है। माहिम की मतलब भरी मुस्कुराहट बताती है कि रेखा को वो पसंद करता है। गांव के स्कूल में रेखा बच्चों को पढ़ा रही है तभी मधु वहां आ जाता है। सारे बच्चे उसके पास भाग जाते हैं। वो बच्चों को खाने की चीजें देता है। रेखा वहां आगे कहती है कि वो वहां न आया करे।
ये सब क्या हो रहा है? चलो 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 अपनी जगह में चलो चलो।
बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है।
तुम कौन हो तो इन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं तुम्हारे?
ये सब मेरे गांव के बच्चे हैं ना।
शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है।
रेखा,
तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है?
मैं जानवर हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है?
तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है ना ही फुर्सत। आइंदा यह नाव तो अच्छा होगा।
मधु की उंगली में एक अंगूठी है जिसपे रेखा नाम लिखा है। फ्लैशबैक में पता चलता है ये दोनों कभी काफी करीब थे। गाँव की बस्ती जहाँ बुरी औरतें रहा करती है वहां माहिम आता है और एक झुमका धन्नो को देना चाहता है पर वो उसका अपमान करके उसे भगाना चाहती है। माहिम नाराज होकर उसकी कलाई मरोड़ता है और तभी मधु आ जाता है और कहता है उसका सब कुछ तो माहिम ने छीन ही लिया पर कम से कम इस औरत को तो छोड़ दे। माहिम मधु से डरता है और भाग जाता है। धन्नो मधु को शराब पीने से मना करती है पर वो नहीं मानता और उसे पैसे दे के कहता है कि कल होली है और ये पैसे गांव के सभी लोगों में बांट दे। सुबह वही पुजारी आरती करता है।
भगवान के दर्शन करने आया हूँ पुजारी जी। अबीर लगाने, आज होली है ना?
होली है तो जाओ अपनी बेड़ियों के साथ जाके रास रचाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? ये मंदिर है, तुम्हारी तरह शराबी कबाबी को यहाँ आने की आज्ञा नहीं है, समझे?
मैं शराब ना पीऊँ तब भी शराबी, और तुम रंगीन रातें गुजारो तब भी पुजारिया। लेकिन एक जमाना था जब हमारे परिवार का कोई ना आए तो आरती तक नहीं होती थी। वक्त का चक्कर है सारा।
जाओ जाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो?
उदास रेखा अपने घर पे ये गाना गाती है।
कल के अपने ना जाने
गाने के बाद मधु रेखा से होली खेलने जाता है तो वो कहती है कि मधु आज जिन गंदी बस्ती और नीच औरतों के साथ रह रहा है वहीं चला जाए। मधु नाराज होकर बस्ती जाता है और धन्नो और उनके साथियों के साथ खूब नाचता है। पंडित उन्हें मंदिर के सामने नाचने से रोकता है तो बस्ती के लोग उसे शराब पिलाने की धमकी देते हैं और वो भाग जाता है। डॉक्टर के घर पे माहिम और इंस्पेक्टर भुवन चाय पी रहे होते हैं तभी पंडित वहाँ आता है और बताता है कि मधु ने उसकी क्या हालत बना दी है।
हुजूर माही बाप रक्षा कीजिए, हुजूर थाने गया था, सुना आप यहाँ है, प्रधान जी भी यही है।
क्या बात है पुजारी?
अरे वही मधु, मधुसूदन चौधरी।
बस समझ गया, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं को बताने दीजिए ना। हाँ बोलिए।
वो मधुसूदन शराब में धुत होकर आ गया। मैंने कहा मंदिर में शराब पीकर न आया करो भैया, बस लगा हंगामा करने, छाती पर सवार हो गया, गला चाप के बोला ढाल दे इसके मुंह में शराब, भर दे इसके मुंह में मांस। देखिए हुजूर क्या हाल कर दिया, आप ही कुछ फैसला कीजिए।
होली का मौका है भुवन बाबू, थोड़ी सी पी पाली होगी मधु ने, मस्त मौला आदमी है। पुजारी जी छोड़िए ना, आज के दिन दुश्मन को भी माफ कर देते हैं।
परंतु ये तो रोज होता है हुजूर।
आप जाइए मैं देखता हूँ।
रेखा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगले दिन माहिम कुछ सब्जी और मछलियां लेकर के थाने आता है। भुवन उसे पैसा देता है तो वो कहता है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं, तो भुवन नाराज होकर कहता है कि वो यहाँ सेवा करने आया है, करवाने नहीं। माहिम अपने आदमियों से कहता है कि ये इंस्पेक्टर जरा अड़ियल टाइप का आदमी है, जल्दी काबू में नहीं आएगा। इधर माहिम अपने गैर कानूनी धंधे का हिसाब कर रहा है तभी उसके घर के सामने से इंस्पेक्टर गुजरता है, यानी भुवन साहब गुजरते हैं। जब माहिम उन्हें अपने घर में बुलाता है तो उनकी कीमती चीजों को देख करके भुवन कहता है कि भुवन ने गांव को पूरा शहर बना रखा है। माहिम उसे शराब पीने को कहता है पर भुवन कहता है वो शराब नहीं पीता और चला जाता है। मधु और उसके दो साथी मिलके नाव की मरम्मत कर रहे हैं। उन्हें देखकर वहां नसीरुद्दीन आता है और बताता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए।
अरे तू भी जल्दी हाथ चला यार, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? आ?
चला तो रहा हूँ उस्ताद।
ए पदा
उस्ताद
निकाल निकाल बाटली निकाल।
बाटली बाटली उस्ताद,
तब तो हो लिया काम उस्ताद।
अरे चब्बा।
अबे साले इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा?
बिल्कुल उस्ताद।
ले पदा तू भी बदले। अबे ज्योति
उस्ताद
ये है असली लाल परी, दो घूंट उतरी
बिल्कुल हरी की हरी उस्ताद।
सलाम मधु बाबू।
अरे आओ आओ नसरुद्दीन, सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है?
क्या बताएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था वो भी पीतू आकर उठा ले गया, कुछ पैसे बाकी थे माहिम बाबू उसी के बदले में ले गया, पता नहीं अल्लाह गरीबों से ही क्यों नाराज है?
अरे अल्लाह को अमीरों से फुर्सत कहाँ है?
बोलो उस्ताद।
बीस रुपए दे दे नसरुद्दीन को।
अब आपसे और लूं?
अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे, 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाएं, तो बुरा क्या है? रखो रखो।
कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू?
भुवन वहाँ आता है, पहली बार उसकी मुलाकात मधु से होती है। मधु उससे सिगरेट मांगकर पीता है। जब इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ शराब पीना गैर कानूनी है, तो मधु बताता है कि यहाँ रात के अंधेरे में बहुत सारे गैर कानूनी काम होते हैं, जाकर पहले उसे रोके। उसका इशारा माहिम की ओर होता है। नसरुद्दीन की नाव पर कब्जा लेने आता है माहिम का एक आदमी, तो मधु उसे मार मार कर भगा देता है। रास्ते में रेखा मिलती है और कहती है, क्यों उसके मुंह लगते हो, वो तो है ही एक जानवर, और चली जाती है। थाने में माहिम अपने आदमी को लेकर आता है और कहता है कि मधु ने बेवजह इसे बहुत मारा है। रेखा वहां थी, अगर गवाही चाहिए तो उनसे पूछ ले। भुवन हवलदार को भेजता है मधु को पकड़कर लाने के लिए, मगर हवलदार कीचड़ में गिर जाता है और वापस आकर झूठ मूठ मधु के नाम पर कहता है कि उसने उसे मारा। तभी मधु वहां थाने में पहुंच जाता है।
मधु मारपीट में आमादा है हुजूर, आपका हुक्म सुना जो कहने लगा। कैसा थाना? कौन थानेदार? जाके कह देना जो करके मैंने कर ले, और मुझे उठा के पकड़ दिया।
ये झूठ है शरद बाबू, आप दो आम कॉन्स्टेबल्स लेके जाइए और अभी अरेस्ट करके ले आइए।
सुरेंद्र दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ।
तुम?
जी श्री मधुसूदन राय चौधरी।
ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिकायत लेकर आया हूं। आप पियादा भेजेंगे और उसके मुंह में जो कुछ आएगा बकेगा, हा? मुझे सुअर कुत्ता बोलेगा।
मैंने सोचा था कि आप न्याय की बात सुनेंगे।
देखिए सरकार, आप
चुप है।
चमचे कहीं के
इंस्पेक्टर साहब, एक जमाना था जब यह महिम घोषाल मेरे यहाँ दो कौड़े का कारिंदा था, और ये पीतू का बच्चा साला दरवान था। आज ये मालिक बना बैठा है और मैं एक बेघर इंसान। अगर ये लोग मुझे गाली दें तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा।
इसलिए हुल्लागर्दी करोगे, पुलिस के आदमी को पीटोगे?
अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे गाली देगा और ये पीतू साला जाके गरीब नसीरुद्दीन की नाव खोल ले जाएगा
तो फैसला तू करोगे?
हाँ करूंगा।
ये जुर्रत अभी झाड़ के रख दूंगा।
अरे आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं।
मारे हंटर के खाल उधेड़ दूंगा।
क्या कहा? आप मेरी खाल उधेड़ेंगे, हंटर मारेंगे मुझे? तो ज्यादा बकबक न कीजिए, दिखाइए क्या कर सकते हैं आप। आइए मैं तैयार हूं।
पर जाते समय मधु कहता है कि आपने भी इंसाफ नहीं किया। भुवन बुरी तरह बौखला जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। मधु को जबरदस्ती लेके उसके दोनों साथी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां डॉक्टर इंस्पेक्टर पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि किसी इंसान को इस तरह भला मारना चाहिए? रेखा कहती है कि पहले दोष किसका है ये तो देखिए, दोष मधु का है। मधु ये सुनकर नाराज होकर ये कहते हुए चला जाता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है और जरूरत पड़ी तो बार बार वो यही करेगा। अगले दिन रास्ते में डॉक्टर और इंस्पेक्टर भुवन दोनों की मुलाकात होती है। डॉक्टर बहुत गुस्से में कहता है कि उन्होंने मधु के साथ अच्छा नहीं किया।
अरे डॉक्टर साहब, आप किधर की तैयारी है?
आप ही की तरफ आ रहा था।
अच्छा शरद बाबू, आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
अच्छा जी,
कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है।
शिकायत मुझसे? कुछ भूल हो गई है क्या?
आपने मधु के साथ न्याय नहीं किया।
देखिए डॉक्टर साहब, जो कानून हाथ में लेगा वो सजा भी भुगतेगा।
तो अब हंटर उठाएंगे, खाल उधर कर रख देंगे।
सॉरी, आई एम सॉरी भुवन बाबू, मैं एक डॉक्टर हूं इसलिए उसे बीमारी ही नहीं उसकी जड़ भी मिटाने की कोशिश करता हूं। भुवन बाबू, मधु बुनियादी तौर पर अच्छा आदमी है, उसका दिल शीशे की तरफ साफ है।
महिम खुशहाल और पीतू ने झूठ बोला है क्या?
हो सकता है उन्होंने उसे उकसाया हो, हाथ उठने पर मजबूर कर दिया हो। भुवन बाबू, आप उन लोगों को जानते नहीं, यही है वो लोग जिनके कारण
मधु की जिम्मेदारी छिन गई।
बेचारा घर से बेघर हो गया, यहां तक कि रेखा के मन में भी उसके लिए जहर घोल दिया।
रेखा देवी आपकी बहन?
जी हाँ, बेहद प्यार था उन दोनों में, लेकिन अब मधु का नाम सुनते ही वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है।
समझा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। मैं भी इंसान हूं, गुस्से में गलती कर सकता हूं।
उमर सिंह नाम का एक अपराधी गांव में आ जाता है। माहिम उसका स्वागत करता है और मधु को सीधा करने को कहता है। उमेर बाजार जा रही रेखा से बदतमीजी करता है तो मधु का एक साथी जाके मधु को खबर देता है। मधु और उमेर में जबरदस्त लड़ाई होती है। मधु अंत में मार मार के उमेर को बेहोश कर देता है। रेखा के मन में मधु के प्रति थोड़ा सा प्यार साफ दिखलाई पड़ता है। तभी पुलिस आ जाती है और माहिम कहता है मधु ने इसे यूं ही मारा। तो रेखा और दूसरी लड़की जो वहां खड़ी थी आके कहती है कि सारी गलती उमेर की थी, उसने बदतमीजी की थी। भुवन उमेर को पहचान जाता है कि वो राम सिंह नाम का एक डाकू है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। माहिम घबरा जाता है। नदी के किनारे मधु खड़ा है और धन्नु जबरदस्ती उसे अपने घर ले जा रही है क्योंकि सुबह से मधु ने कुछ खाना नहीं खाया और वो मधु से कहती है कि उसका सब कुछ तो छिन चुका है, फिर भला वो काहे के लिए लड़ाई करता है। घर पे जब मधु शराब पीता है तो मधु को रोकने के लिए धन्नु ये गाना गाती है।
बस करो बाबू, अब नहीं पियो।
क्यों तंग करती हो? पीने दे, पीने दे। सब कुछ भूलना चाहता हूँ।
क्यों, क्या गम है तुमको?
गम? तू नहीं समझेगी। जा 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 जा, काम कर अपना, जा।
प्यार नहीं है धन्नो, प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत।
इंस्पेक्टर भुवन मधु को धन्नो के घर से ले जाता है और उसे माफी मांगता है। मधु से पूछता है कि आखिर रेखा से उसकी दूरी हुई कैसे। तब फ्लैशबैक में मधु बताता है कि कैसे भुवन और उसके साथी ने उसके चाचा जी को, जो उस वक्त जमींदार थे, उन्हें यकीन दिलवा दिया कि मधु एक चोर है, जबकि पैसे माहिम ने चुरा के मधु के कमरे में रख दिए थे। और यही नहीं, एक नौकरानी चंपा जिसके पेट में माहिम का बच्चा था, उसे पैसे देके और मजबूर करके ये कहने को कहा कि ये बच्चा मधु का है। रेखा ने भी उस नौकरानी पर विश्वास कर लिया। दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई। मधु को चोरी के जुर्म में सजा हो जाती है। वो जेल से लौटता है तो देखता है कि उसके चाचा जी की मौत हो गई है और सारी जमीन जायदाद माहिम ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया है।
कौन? कौन है? पहचाना नहीं? महिम घोषाल।
कौन? मधु बाबू।
बाबू? बाबू तब साले तुम बन गए हो।
कैसी बातें कर रहे हैं मधु बाबू? आप आए कब? बैठिए ना, बैठिए बैठिए।
चैन से बैठने के दिन तो तभी चले गए महिम घोषाल, जब तूने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवाया था। अब बैठना कैसा?
आप मुझे गलत समझ रहे हैं मधु बाबू, मैंने बहुत कोशिश की आपको छुड़ाने की।
छोड़ उसे, मेरे साथ जो हुआ वो बाद में देखूंगा। पहले ये बताओ कमीने, चाचा जी का खून तूने कैसे किया?
कौन कौन कहता है खून? उनकी तबीयत क्या बहुत खराब हो गई थी, अचानक चल बसे।
अचानक चल बसे?
हाँ।
अचानक? और अगर ये अचानक चल जाए तो
ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें गोली है।
इस बंदूक से शेरों का शिकार क्या है, तुझ जैसे गिदड़ को क्या मारूंगा। ले इसे भी तू ही रख ले, और ये बता चाचा जी की सारी जायदाद रुपया पैसा उसका क्या किया तूने?
वो तो सरकार ने सब नीलाम कर दिया।
और तूने सब खरीद लिया?
मैंने सोचा कि घर का मामला है, सब घर में ही रहे। ये सब आप ही का है मधु बाबू, चाहे तो आप यहीं रह सकते हैं।
नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन ये गांव छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। इस गांव में रहूंगा तब तक जब तक तुझे खत्म नहीं कर लूंगा।
फ्लैशबैक से वापस आने पर भुवन उसे नई जिंदगी जीने को कहता है और उसे अपने दोस्त इंजीनियर से मिलने को कहता है। उसका कहना है कि मधु को वहां काम जरूर मिल जाएगा और चंपा को इंस्पेक्टर खुद ढूंढने का वादा करता है। भुवन के कहने पर इंजीनियर की ओर से मधु को बांध बनाने का काम मिल जाता है और इंजीनियर वादा भी करता है कि वो पार्ट पेमेंट करवा के उसकी सहायता भी करेगा। माहिम बौखलाया जाता है और भुवन को साथ लेकर ये दिखाता है कि मधु जैसा शराबी इतना बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। भुवन जब मधु से पूछता है कि क्या वो शराब छोड़ सकता है क्योंकि ये जहर है, तो मधु ये गाना गाता है।
न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई।
सुबह मधु भुवन से माफी मांगने जाता है और काम पर जाने की तैयारी करता है। जाते वक्त रेखा से मिलके कहता है कि अब उसकी वजह से उसे कोई असुविधा नहीं होगी। रेखा कुछ कहना तो चाहती है पर कह नहीं पाती। माहिम आके रेखा से फिजूल की बातें करता है। जब रेखा नाराज हो जाती है तो माहिम कहता है कि आजकल गांव में मधु भी नहीं है, यानी वो उसे धमकी देता है। बाढ़ का काम जोरों पर है। माहिम मौके का फायदा उठाता है, बंजर पड़ी जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है क्योंकि बांध बन जाने के बाद वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी, पर मधु उन लोगों को मार मार के भगा देता है। भुवन और इंजीनियर मधु का काम देखने जाते हैं, जहां इंजीनियर मधु से शराब मांगता है। मधु के ना कहने पर वो खुश हो जाता है। असल में वो मधु की परीक्षा ले रहा था। वो मधु से कहता है कि बरसात से पहले अगर काम पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और चला जाता है। बारिश हो रही है और एक दूर गांव वाला डॉक्टर की मिन्नतें करता है, पर डॉक्टर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए रेखा उसके साथ जाती है और उस आदमी को बेटा होता है। पर लौटते वक्त रात हो जाती है। लॉन्च पे कुछ लोग रेखा के पीछे पड़ जाते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, पर वहाँ भी मधु आके उसको बचाता है और खाने को कहता है क्योंकि इंजन खराब हो चुकी है और सारी रात वो लॉन्च वहीं खड़ी रहेगी। लॉन्च ठीक करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि सारे लॉन्च वाले शराब पी के मदहोश हो चुके हैं। रेखा जब खाने से इनकार कर देती है तो मधु खाने को बाहर फेंक देता है। फिर सुबह सुबह मधु ये गाना गाता है।
किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा।
ये गाना सुनकर एक बार फिर रेखा उसकी यादों में खो जाती है। बरसात जोरों से हो रही है और गांव का बांध टूटने वाला है। सारे गांव वाले और वो पुजारी भी मधु की मिन्नतें करते हैं कि वो जाकर उन्हें बचाए।
मधु बाबू,
तुम लोग क्यों आए हो इधर? क्या चाहिए तुम लोगों को?
मधु बाबू, बांध टूटा है, आप ही कुछ कीजिए।
जल्दी कीजिए,
नहीं तो सारा गांव डूब जाएगा। हाँ मधु बाबू,
चले जाओ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए और तुम लोगों ने क्या दिया है मुझे? बदनामी, इल्जाम।
मधु बाबू, चलो भाई, चलो।
मधु धन्नो को कहता है कि वो उसे लेके दूर चला जाएगा। धन्नो कहती है कि रेखा अब भी उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए उसने खाना बनाकर भेजा है। थोड़ी देर बाद रेखा खुद वहां आके मधु से कहती है कि गांव वालों को बचाए। तब मधु उसकी बात नहीं टाल सकता और बांध को बचाने चला जाता है और बचा भी लेता है।
अरे मधु, तुम यहाँ हो, इस बात को बचा कर तुमने सैकड़ों जाने बचा लिए। वाह, आई मस्ट कंग्रेचुलेट।
ये साला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाद में दीजिएगा, पहले इन लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम तो कीजिए।
अरे भाई, पुलिस का आदमी हूँ, रैशनिंग का नहीं, इतने लोगों के लिए एकदम अरेंजमेंट कैसे हो सकता है?
अरे बाबा, पुलिस का आदमी होकर ये भी नहीं जानते कि महिम घोषाल के गोदाम में कितना अनाज दबा पड़ा है।
महिम के गोदाम में?
जी हाँ।
अच्छा, ऐसा है तो मैं ले आऊंगा।
ये देखो कौन आया है।
इतनी बारिश में तुम क्यों आई हो रेखा? हाँ,
थोड़ी सी भीग भी जाओगे तो क्या होगा, और सभी तो यहाँ हैं।
लेकिन रेखा, इतनी रात में तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं।
और वो लॉन्च वाली रात में, उस रात में लॉन्च में रहना ठीक था?
हाँ वो रात। हाँ
हाँ मधु, उस भयानक रात में ही एक विश्वास फिर से पैदा हुआ, वो विश्वास जो मैं हमेशा के लिए खो बैठी थी। अगर वो रात ना आती तो मेरी जिंदगी शायद यूं ही सोनी बीत जाती।
इधर उसी बरसात की वजह से माहिम का बनाया हुआ बांध टूट जाता है और उसके नाम वारंट निकल जाता है। उसका आदमी आकर बताता है कि पुलिस उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। माहिम अपने आदमी से कहता है कि वो जाके कुछ बोट्स का इंतजाम करे और उस पर गोदाम के सारे माल को रखवा दे। वो लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, मगर गांव छोड़ने से पहले माहिम का कहना है कि वो पूरे गांव में आग लगा देगा। माहिम का आदमी गांव के स्कूल और कई घरों में आग लगा देता है। चारों तरफ खलबली मच जाती है और इसका फायदा उठाकर माहिम रेखा को भी जबरन उठा ले जाता है। माहिम अपने आदमियों के साथ रेखा को जबरदस्ती बोट पर ले जा रहा है, पर धन्नो वहां आ जाती है और उसे बचाने के लिए खुद को जख्मी कर लेती है। इतने में मधु आ जाता है। माहिम बोट पर पहुंच चुका है, मगर मधु वहां पहुंचकर उसे बहुत मारता है और नीचे फेंक देता है। भुवन का ट्रांसफर हो जाता है। मधु बहुत दुखी हो जाता है। पुलिस माहिम को जेल ले जा रही है, साथ में भुवन भी है। तभी मधु वहां भागा भागा टिफिन लेकर आता है और भुवन से कहता है,
आपके लिए खाना बना कर लाया हूं। आपको तो कोई फिक्र नहीं है हमारी, लेकिन हमें चार घंटे का सफर है ना, रास्ते में भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? हवा लीजिए लीजिए, रखिए इसे रखिए, और क्या जाइए। मुंह क्या देख रहे हैं आप क्या समझते हैं? आपके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, हम रह लेंगे और खूब अच्छी तरह रह लेंगे, क्या समझते हैं आप?
अरे मधु सुनो तो मधु।
एकदम आखिर में उदास मधु नदी किनारे खड़ा है और रेखा उसके पास आती है, उसका हाथ थाम लेती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
नदियां में
जा